नमस्ते, मैं आराफ हूँ। नाइन नाटरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। थॉमस एम कवर और जॉय ए थॉमस की एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्योरी सूचना सिद्धांत का एक मानक गणितीय पाठ्य पुस्तक है। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि सूचना को कैसे मापा जाए, सीमित संसाधनों में कैसे संकुचित किया जाए और शोर वाले संचार माध्यमों पर कितनी विश्वसनीयता से भेजा जा सकता है। दूसरी संस्करण में एंट्रोपी, डेटा कंप्रेशन, चैनल कैपेसिटी, रेट डिस्टॉर्शन, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन थ्योरी और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जैसे केंद्रीय विषयों का व्यवस्थित अध्ययन मिलता है। पुस्तक केवल सूत्रों का संग्रह नहीं है, बल्कि संभाव्यता, सांख्यिकी और संचार के बीच मौजूद गहरे संबंधों को विकसित करती है। इसकी शैली कठोर है, इसलिए पाठक को प्रायिकता, कलन और गणितीय तर्क की बुनियादी सुविधा अपेक्षित है। अध्यायों के अंत में संक्षिप्त सार, समस्याएं और ऐतिहासिक टिप्पणियां इसे पाठ्यक्रम तथा गंभीर स्वाध्याय दोनों के लिए उपयोगी बनाती हैं। यह उन सिद्धांतों की भाषा सिखाती है जिन पर आधुनिक संपीड़न, संचार और सांख्यिकीय अनुमान आधारित है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, एंट्रोपी के माध्यम से अनिश्चितता और सूचना का मापन। पुस्तक का आधार एंट्रोपी है, जो किसी यादृच्छिक स्रोत की औसत अनिश्चितता को मापती है। इसका अर्थ केवल यह नहीं कि संदेश कितना लंबा है, बल्कि यह कि संदेश आने से पहले उसके परिणाम को लेकर कितनी अनिश्चितता थी। अत्यंत संभावित घटनाएं कम नई सूचना देती है, जबकि दुर्लभ घटनाएं अधिक सूचना देती है। यह विचार सहज लग सकता है, पर पुस्तक इसे प्रायिकता वितरण, संयुक्त एंट्रोपी, सशर्त एंट्रोपी और म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सटीक बनाती है। म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन बताती है कि एक प्रेक्षण दूसरी यादृच्छिक राशि के बारे में अनिश्चितता कितनी घटाता है। इसलिए यही मात्रा संचार, सांख्यिकीय निर्भरता और सीखने की समस्याओं में बार बार उभरती है। लेखक यह भी दिखाते हैं कि एंट्रोपी का महत्व उसके गणितीय गुणों में है, जैसे श्रृंखला नियम और असमानताएं, जो जटिल प्रणालियों को छोटे भागों में विश्लेषित करने देते हैं। पुस्तक में मैक्सिमम एंट्रोपी सिद्धांत भी महत्वपूर्ण है। जब उपलब्ध बाधाएं सीमित हों, तब सबसे कम अतिरिक्त मान्यताओं वाला वितरण चुनने का तर्क इसी से निकलता है। इस तरह एंट्रोपी अनिश्चितता का वर्णन करने के साथ अनुमान लगाने का अनुशासित ढांचा भी बनाती है। दूसरा, स्रोत कोडिंग और डेटा कंप्रेशन की सैद्धांतिक सीमा। डेटा कंप्रेशन के अध्याय यह प्रश्न उठाते हैं कि किसी स्रोत से बने संदेशों को औसतन कितने बिटों में प्रस्तुत किया जा सकता है। स्रोत कोडिंग प्रमेय का केंद्रीय निष्कर्ष है कि हानि रहित संपीड़न की मूल सीमा स्रोत की एंट्रोपी से जुड़ी है। यदि औसत कोड लंबाई एंट्रोपी से काफी नीचे ले जाने का प्रयास किया जाए, तो सभी संदेशों को विश्वसनीय ढंग से अलग अलग पहचानना संभव नहीं रहता। दूसरी ओर, पर्याप्त लंबे संदेश खंडों के लिए एंट्रोपी के निकट पहुंचना संभव है। यह परिणाम किसी खास फाइल प्रारूप का नियम नहीं, बल्कि प्रायिकता और गिनती का मूल परिणाम है। पुस्तक विशिष्ट कोडों और असमान लंबाई वाले कोड शब्दों के पीछे के तर्क को भी रखती है। अधिक संभावित प्रतीकों को छोटे और कम संभावित प्रतीकों को लंबे प्रतिनिधित्व देना औसत लंबाई घटाता है। ब्लॉक कोडिंग और टिपिकल सीक्वेंस की अवधारणा समझाती है कि लंबी स्रोत श्रेणियों में अधिकांश संभावना अपेक्षाकृत छोटे संरचित समूह में केंद्रित होती है। यही कारण है कि संपीड़न संभव होता है, पर पुस्तक एक महत्वपूर्ण सीमा भी स्पष्ट करती है। स्वतंत्र और समान वितरण वाली धारणाएं विश्लेषण को साफ बनाती है, जबकि वास्तविक स्रोतों की निर्भरताएं मॉडलिंग को अधिक कठिन बना सकती है। इसलिए सिद्धांत सीमा बताता है, व्यावहारिक कंप्रेसर उसका अनुमानित उपयोग करते हैं। तीसरा, चैनल कैपेसिटी और शोर के बीच विश्वसनीय संचार। चैनल कोडिंग का विषय यह है कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच शोर हो, तब भी संदेश को विश्वसनीय कैसे बनाया जाए। पुस्तक चैनल कैपेसिटी को ऐसी अधिकतम संचार दर के रूप में स्थापित करती है जिसके नीचे त्रुटि की संभावना को लंबे कोडों के साथ बहुत छोटा किया जा सकता है। इस सीमा का संबंध इनपुट और आउटपुट के बीच म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन से है। यह दृष्टि महत्वपूर्ण है, क्योंकि कैपेसिटी केवल उपकरण की गति नहीं है, वह चैनल के शोर, इनपुट प्रतिबंधों और चुने गए प्रायिकता वितरण तीनों पर निर्भर करती है। चैनल कोडिंग प्रमेय दो विरोधी बातें एक साथ बताता है। कैपेसिटी से कम दर पर विश्वसनीयता सिद्धांततः संभव है, किंतु कैपेसिटी से ऊपर सामान्यतः विश्वसनीय संचार संभव नहीं है। इसीलिए त्रुटि सुधार कोड अनावश्यक दोहराव नहीं, बल्कि शोर के विरुद्ध आवश्यक संरचना है। पुस्तक विविक्त चैनलों से आरंभ कर अधिक व्यापक मॉडल तक जाती है और उपलब्धि तथा सीमा दोनों के प्रमाणों की रूपरेखा देती है। फीडबैक कैपेसिटी पर सामग्री ये अंतर भी दिखाती है कि आउटपुट की पूर्व सूचना प्रेषक की रणनीति बदल सकती है, हालांकि हर चैनल में वो मूल कैपेसिटी बढ़ाए। यह आवश्यक नहीं, यह सावधानी पुस्तक को सरल तकनीकी नुस्खों से अलग बनाती है। चौथा, रेट डिस्टॉर्शन सिद्धांत में सीमित बिटों के साथ नियंत्रित हानि, हर सूचना को बिल्कुल उसी रूप में पुनर्निर्मित करना आवश्यक नहीं होता। चित्र, ध्वनि और अन्य निरंतर संकेतों में अक्सर थोड़ी स्वीकार्य विकृति के बदले बिटों की बड़ी बचत संभव होती है। रेट डिस्टॉर्शन सिद्धांत इसी समझौते को गणितीय रूप देता है। पुस्तक पूछती है कि किसी निश्चित औसत डिस्टॉर्शन सीमा के भीतर स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए न्यूनतम दर क्या होगी। उत्तर स्रोत के वितरण और चुने गए डिस्टॉर्शन माप दोनों पर निर्भर है। इसलिए हानियुक्त कंप्रेशन में गुणवत्ता की परिभाषा तकनीकी निर्णय का अनिवार्य भाग है। यदि डिस्टॉर्शन माप मानव सुनने या देखने के अनुभव से मेल न खाए तो कम बिट दर का परिणाम उपयोगी नहीं भी हो सकता। पुस्तक का योगदान यह है कि वह इस व्यावहारिक लगने वाले प्रश्न को सटीक अनुकूलन समस्या में बदलती है। लेट डिस्टॉर्शन फलन बताता है कि अधिक बिट उपलब्ध होने पर विकृति कितनी घटाई जा सकती है और किस सीमा से नीचे उसे नहीं ले जाया जा सकता। स्रोत कोडिंग के हामी रहित मामले से इसका संबंध भी साफ है। शून्य डिस्टॉर्शन की मांग विशेष स्थिति है, जबकि नियंत्रित विकृति अधिक सामान्य और लचीला परिदृश्य है। इस ढांचे से पाठक समझता है कि किसी एल्गोरिदम की गुणवत्ता केवल फाइल आकार से नहीं, उसके परिभाषित पुनर्निर्माण लक्ष्य से मापी जानी चाहिए। अंत में नेटवर्क, अनुमान और निर्णय में सूचना सिद्धांत का विस्तार पुस्तक सूचना सिद्धांत को एक प्रेषक और एक प्राप्तकर्ता वाले सरल मॉडल तक सीमित नहीं रखती। नेटवर्क इन्फॉर्मेशन थ्योरी के अंतर्गत अनेक उपयोगकर्ताओं वाले चैनलों में संदेशों, हस्तक्षेप और साझा संसाधनों की समस्या आती है। ब्रॉडकास्ट, मल्टीपल एक्सेस और अन्य बहु उपयोगकर्ता स्थितियों में एकल कैपेसिटी संख्या के बजाय दरों का क्षेत्र महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि उपयोगकर्ताओं को अलग अलग सर्वोत्तम बनाना हमेशा पूरे नेटवर्क को सर्वोत्तम नहीं बनाता। पुस्तक इन समस्याओं में कोड डिजाइन, संयुक्त वितरण और डिकोडिंग रणनीतियों की भूमिका को सैद्धांतिक रूप से रखती है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सांख्यिकीय अनुमान से संबंध दूसरी दिशा खोजता है। किसी प्रेक्षण के आधार पर प्रतिस्पर्धी व्याख्याओं में निर्णय लेते समय त्रुटियों के प्रकार और उपलब्ध प्रमाण की सूचना मात्रा मायने रखती है। रिलेटिव एंट्रोपी जैसे विचार दो वितरणों के बीच अंतर मापने का साधन देते हैं। यह अंतर केवल दूरी जैसा सहज माप नहीं है, बल्कि गलत मॉडल को सही मॉडल से अलग पहचानने की दर से जुड़ सकता है। पुस्तक में पोर्टफोलियो थ्योरी जैसी सामग्री यह भी संकेत देती है कि सूचना के मूल्य का संबंध निर्णय के परिणाम से हो सकता है। फिर भी इसका मुख्य लक्ष्य अनुप्रयोगों की सूची देना नहीं, उन साझा गणितीय सिद्धांतों को दिखाना है जो संचार, अनुमान और निर्णय को जोड़ते हैं। निष्कर्ष में एलिमेंट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्योरी उन उन्नत स्नातक और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दूरसंचार, कंप्यूटर विज्ञान, सांख्यिकी या मशीन लर्निंग की सैद्धांतिक नींव समझना चाहते हैं। शोधार्थियों और कार्यरत तकनीकी पेशेवरों के लिए भी यह तब उपयोगी है जब उन्हें कंप्रेशन, त्रुटि सुधार, सांख्यिकीय अनुमान या बहु उपयोगकर्ता संचार के पीछे की सीमाओं को सूत्रों सहित समझना हो। यह आरंभिक हल्की परिचयात्मक पुस्तक नहीं है। पाठक को प्रायिकता वितरणों, अपेक्षा, सशर्त प्रायिकता और प्रमाण आधारित गणित से सहज होना चाहिए। बदले में पुस्तक केवल यह नहीं बताती कि कोई तकनीक काम करती है, बल्कि यह बताती है कि वह किन मान्यताओं में काम कर सकती है और उसकी अपरिहार्य सीमा कहाँ है। इसी बिंदु पर यह समान विषय की अधिक अनुप्रयोग केंद्रित पुस्तकों से अलग दिखती है। कवर और थॉमस की विशेषता अवधारणात्मक स्पष्टता और गणितीय कठोरता का संयोजन है। एंट्रोपी से आरंभ होकर स्रोत कोडिंग, चैनल कैपेसिटी, रेट डिस्टॉर्शन, नेटवर्क और अनुमान तक इसका क्रम पाठक को अलग अलग सूत्रों के बजाय एक संगठित बौद्धिक ढांचा देता है। अध्याय सार, समस्याएं और ऐतिहासिक टिप्पणियां सीखने को सक्रिय बनाती है। इसलिए जो पाठक आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के पीछे सूचना की मूल भाषा सीखना चाहता है, उसके लिए यह दीर्घकालिक संदर्भ ग्रंथ है। हालांकि इसे धैर्यपूर्वक पढ़ना और समस्याएं हल करना आवश्यक रहेगा। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं थॉमस एम. कवर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।